कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। दोस्तों, प्रसिद्ध शायर वसीम बरेलवी जी ने इस शेर में जो बात कहनी चाही है वो हम सभी पर कभी ना कभी सटीक बैठती है, क्योंकि हम में से अधिकांश लोगों की ये समस्या होती है कि हम तो अपनी बात कहते हैं पर उसे कोई ध्यान से सुनता ही नहीं। लेकिन चंद ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ये हुनर होता है कि अपनी बात कहां और कैसे कहनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा उनकी बात सुनी जाए। और ऐसे ही एक व्यक्तित्व आज हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित है। जी दोस्तों, आप चुभन के कार्यक्रमों में उनको पहले भी सुन चुके हैं। मेजर जनरल अमिल कुमार शोरी जी आज हमारे साथ होंगे। मेरे श्रोता आपके बारे में सब जानते ही हैं, लेकिन जो नए श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगी कि मेजर जनरल शोरी जी 1982 बैच के भारतीय डाक सेवा के अधिकारी के तौर पर नियुक्त हुए। आपने सेना डाक सेवा कोर में 21 वर्षों तक देश की सेवा की और मुख्य पदों पर कार्य करते हुए 2011 में एडिशनल डीजी एपीएस का पदभार संभाला। मार्च 2015 में चीफ पोस्टमास्टर जनरल हिमाचल प्रदेश डाक परिमंडल के रूप में भार ग्रहण करने से पूर्व सेना डाक सेवा कोर के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे। जुलाई 2016 में आप डाक बोर्ड के सदस्य के रूप में सेवानिवृत्त हुए। आज अपने कार्यक्रम में हम शोरी जी के लेखक रूप की चर्चा करेंगे। आपकी 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज उनकी पुस्तक इनविजिबल शेड्स ऑफ रामायणा, जो कि वाल्मीकि रामायण पर आधारित है, पर जनरल साहब के ही विचार जानने का हमें अवसर मिलेगा। दोस्तों, आपकी ये पुस्तक आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य रामायण पर आधारित है। इसमें आपने वाल्मीकि रामायण के 20 चरित्रों को लिया है और उन चरित्रों के उस रूप को हमारे सामने लाने का सफल प्रयास किया है जिनसे शायद हम अभी तक अपरिचित ही रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर हमारी एक परंपरावादी दृष्टि होती है जिसमें पीढ़ियों से जो बातें चली आ रही हैं उन्हें ही मानते हुए हम चलते चले जाते हैं। और इतने महान ग्रंथ जिसकी बातें यदि अमल में लाई जाएं तो एक नए युग का निर्माण हो सकता है, लेकिन हमारी दकियानुसी सोच के चलते कुछ भी नहीं हो पाता। आपकी किताब का शीर्षक इनविजिबल शेड्स ऑफ रामायणा बिल्कुल सटीक है। इसमें आपने वास्तव में वाल्मीकि रामायण के कथानक के उन अदृश्य रंगों को अपनी लेखनी से एक नया रूप दिया है जो शायद हम में से बहुत सारे लोगों के लिए अदृश्य ही रह जाते। तो आइए दोस्तों, मेजर जनरल अमिल कुमार शोरी जी को अपने कार्यक्रम से जोड़ते हैं और उनकी पुस्तक के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, नमस्ते सर।
नमस्कार मैडम।
नमस्ते सर, आ रही है ना आवाज एकदम साफ?
हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है।
हाँ जी सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है।
मेरी आवाज आ रही है आपको?
हाँ जी सर, एकदम आ रही है आपकी आवाज।
ओके ओके,
आपका हार्दिक अभिनंदन है सर कार्यक्रम में।
बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
सर, जब भी आप हमारे कार्यक्रम में आते हैं तो सामान्य से लगने वाले विषय भी जो है वो एकदम खास हो जाते हैं, और आज तो एक नया रंग होगा क्योंकि आपकी पुस्तक इनविजिबल शेड्स ऑफ रामायणा पर आप आज हमें बताएंगे।
जी
तो सर, आप इस विषय पर कुछ शुरू करें तो मैं एक प्रश्न सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको कैसे विचार आया कि वाल्मीकि रामायण के इन चरित्रों को लेकर आप एक नई दृष्टि दें इस अदृश्य दृश्यों को इस पुस्तक के, वाल्मीकि रामायण के।
मैडम, वाल्मीकि रामायण इतने बड़े 2 वॉल्यूम में है और
जी
उसको अच्छी तरह से पढ़ने में काफी टाइम लगता है। उस वक्त
बिल्कुल
मैं
सही।
सर्विस में था, तो सर्विस में रहते हुए सुबह 8 बजे तो ऑफिस चले जाना होता है, तो सुबह पांच साढ़े
जी
5 बजे उठकर मैं नहा धोकर जो है रामायण पढ़ना शुरू कर देता था। समय की कमी की
जी
वजह से आप 10-12 10 या 15 से पेजेस से ज्यादा एट ए टाइम में नहीं पढ़ सकते। खैर, मेरे
बिल्कुल
को साल
बिल्कुल
1.5 साल लगा, तो उसके पढ़ने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि ये चीजें जो मुझे कभी किसी ने बताई ही नहीं थी, मुझे मालूम ही नहीं था,
जी
बड़ी हैरानी भी हुई। और मैंने कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन किए, कुछ नोट्स बनाने शुरू किए। और
जी
हालांकि उसके बाद मेरी पहली पुस्तक आई थी 7 शेड्स ऑफ श्री राम, जिसमें मैंने श्री
जी
राम को एज ए सन, ब्रदर, हस्बैंड, वॉरियर, किंग, ऋषि, फिलोसफर और 7वां शेड था मर्यादा पुरुषोत्तम का, वो हल्का हल्का मेंशन किया था। लेकिन
जी
मेरी तसल्ली नहीं हुई थी, तो मैंने फिर से वाल्मीकि रामायण पढ़ने शुरू किए। फिर मेरे को साल 1.5 साल के करीब लगा, तो वो उस सेकंड रीडिंग में मेरे को जो चीजें लगी कि ये जिसको मैंने किताब का टाइटल दिया इनविजिबल शेड्स, के वो अदृश्य थी, वो छुपी हुई चीजें थी,
जी
उनको मैंने उभार कर निकाल कर किताब में डाला और उसका टाइटल रखा इनविजिबल शेड्स ऑफ रामायण।
जी सर, जितनी भी मैंने आपकी किताब अभी तक पढ़ी है तो उसमें आपका परिश्रम दिखता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। आपने बिल्कुल गहन अध्ययन किया है वाल्मीकि रामायण का।
जी
और हम लोग भी चीज होती है, ज्यादातर लोग सर यही कहते हैं कि सफल नहीं हो पाते तो कह देते हैं कि किस्मत का दोष था। लेकिन आपको देखकर मैं एक चीज कहूंगी कि आपको देखकर मैंने ये जाना है कि सफलता का सूत्र है 99% मेहनत और 1% किस्मत।
बिल्कुल
ये
बिल्कुल
तो मानना पड़ेगा सर आपके
बिल्कुल,
व्यक्तित्व को
किस्मत
देखकर।
जो है
तो आप
वो
सर
परिश्रम करने वालों के साथ अपने आप चलना शुरू कर देती है।
सर बिल्कुल
देर हो
बिल्कुल
सकती
ठीक
है,
कह रहे हैं
लेकिन फल जरूर मिलता है, मेहनत का फल जरूर मिलता है।
बिल्कुल
खैर,
बिल्कुल
किताब
सर,
पर आए,
मेहनत आज जी सर
किताब की बात करें या इनविजिबल
जी
शेड्स की
बिल्कुल सर
बात
किताब
करें?
की बात कर रहे हैं, इंतजार है हमें बिल्कुल इस
जी
किताब की बात करें आप।
देखिए, मैंने जो है इनविजिबल शेड्स ऑफ रामायणा जो लिखी है, उसमें मैंने टोटल 20 करेक्टर्स जो है वो वाल्मीकि रामायण से निकाले हैं। उसमें
जी जी
से 10 जो है कह लीजिए कि श्री राम की साइड के हैं और 10 के करीब जो है रावण की साइड के हैं। तो
जी
ये जब मैं इनको पढ़ा, उसको मैंने जानने की कोशिश की, तो वो ऐसी जो छुपी हुई चीजें थी वाल्मीकि रामायण में जिसके बारे में हमें नहीं मालूम था, वो मैंने उभारने की कोशिश की, और उसी को मैं आज आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा।
जी सर
क्योंकि करेक्टर ज्यादा है और समय की सीमा भी होती है, इसलिए मैं आज कोशिश करूंगा कि 3 ऐसे करेक्टर्स के बारे में बात करूं, बाकी समय के हिसाब
जी
से भी उसको आगे पीछे किया जा सकता है।
जी जी बिल्कुल
अब वाल्मीकि रामायण है तो शुरुआत तो राजा दशरथ से ही होगी।
जी बिल्कुल
राजा दशरथ के में जो इसमें जो इनविजिबल चीज मेरे को मिली है, वो बात करने से पहले, शेयर करने से पहले, अब आप देखिए, जो राजा दशरथ, प्राण जाए पर वचन ना जाए, रघुपति रीत सदा चली आई, ये जो बात जो है हम सुनते आ रहे हैं कि राजा दशरथ ने अपनी रानी कैकेयी को 2 वर दिए थे। ठीक है,
जी
अगर आप थोड़ा सा इसको, मैंने इसको पहले तो जानने की कोशिश की, तो मैंने मेरे मन में कुछ प्रश्न भी आए, फिर मैं आगे भी चलूंगा। भाई, राजा ने रानी को 2 वर दिए थे, अब उनका सबसे प्रिय पुत्र कौन था? वो तो श्री राम थे। उन्होंने
जी
जो है बड़ी सभा में सारे सभासद और आसपास के जो है जो पड़ोसी देश के राजा है उनकी भी कंसेंट लेकर, और श्री राम पिछले काफी समय से उनका एडमिनिस्ट्रेशन में हाथ बटा रहे थे, उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा हो गया था, उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्होंने एक एक फैसला जो है सर्वसम्मति से ले लिया कि श्री राम को मैंने अपना जो है आगे जो है गद्दी संभालने के लिए इनका राज्याभिषेक करना है। अब आप देखिए, वाल्मीकि रामायण में ये सारी चीजें मेंशन है, मैं उसका हल्का 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 सा मेंशन कर रहा हूं, फिर मैं असली चीज पर आऊंगा। ये फैसला लेने के बाद राजा दशरथ सबसे पहले किसके पास जाते हैं? वो श्री राम की माता कौशल्या के पास नहीं जाते, वो कैकेयी के पास जाते हैं। क्यों,
जी
किस लिए? चलिए, क्यों जाते हैं उसको भी अगर आप मन में रखें, राजा दशरथ अगर चाहते तो वो उस वादे से मुकर भी सकते थे, भाई राजा थे कह सकते थे, कौन गवाह था कि उन्होंने केकई को ये दो बर दिए हैं। वो रथ का पहिया बदलते वक्त जो है उन्होंने अपनी बाजू फंसा दी और पहिया जो है चलता रहा और राजा दशरथ ने उस वक्त जो है दो बर दे दिए, ही कुड हैव इजीली डिनाइड इट। अच्छा अगर वो मना ना भी करते या मुकरते नहीं, वो उसको मॉडिफाई भी करवा सकते कि अच्छा ऐसा करते हैं, ऐसा ना करो वैसा कर लो, वैसा ना करो ऐसा कर लो। या वो राजा थे, उनकी रानी थी और वो चाहते थे उसके ऊपर जोर जबरदस्ती भी कर सकते कि आप इस तरह के वर नहीं, कोई और कोई वर मांग लो, लेकिन राजा दशरथ ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों क्यों नहीं किया? अच्छा आप यहां पर मैं उस इनविजिबल शेड की बात करता हूं, वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के उसका जो सर्ग शायद 57 है, 57 के सर्ग के तीसरे और 10 श्लोक में अगर हम पढ़ें तो क्या लिखा है, तीसरे श्लोक में क्या लिखा है। अब ये जो बात है, ये बात कह कौन रहा है? ये श्री राम भरत को बता रहे हैं। जब भरत श्री राम को मनाने के लिए जंगल में जाते हैं और उस वक्त श्री राम जो है भरत को एक बात बता रहे हैं कि भरत, उस श्लोक में क्या लिखा हुआ है कि भरत वाइल मैरिंग केकई योर मदर, ब्रैकेट में उसमें लिखा है तुम्हारी माता केकई से शादी करते वक्त, अवर फादर अवर सेलिब्रेटेड फादर प्रोमिस्ड टू योर मेटर्नल ग्रैंड फादर द किंगडम ऑफ अयोध्या इन फेवर ऑफ हर इशू एज द बेस्ट प्राइज फॉर द मैरिज। मतलब कि जब राजा दशरथ का मन आ गया केकई के ऊपर, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी, तो उन्होंने जब उनसे शादी करने के लिए अपना मन बना लिया, तो उस वक्त उसके केकई के पिता ने जब मना कर दिया तो राजा दशरथ ने उसको वादा किया कि जो इससे बेटा होगा वो अयोध्या की गद्दी पर बैठेगा। अब देखिए इसके बाद के बारे में हमें मालूम है क्या?
ना, ये तो बिल्कुल नहीं मालूम।
तो वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में 57 के सर के श्लोक नंबर 3 में ये लिखा हुआ है और उसके बाद 10वें श्लोक में श्री राम भरत को कहते हैं, भरत तुम मेरे को मजबूर मत करो, एक्सोनरेट द पावरफुल किंग फ्रॉम द टैक्स ही ओज टू केकई। उसके ऊपर केकई के फादर केकई का जो कर्जा चढ़ा हुआ है उस कर्जे से उसकी मुक्ति होने दो और सेव योर फादर बाय रिडीमिंग हिज प्रॉमिस एंड डिलाइट योर मदर। ये बात श्री राम भरत को बताते कि ये सिर्फ युद्ध में जान बचाते हुए दो वरदान की बात नहीं है, ये तुम्हारे नाना के साथ किया हुआ वो हमारे पिता का वादा है कि जो बेटा होगा वो गद्दी पर बैठेगा। अब इस बात के बारे में राजा दशरथ को मालूम है कि उन्होंने वादा किया हुआ है। अब आप देखिए वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि राज्याभिषेक,
पर सर हम मैडम ने को आपके वचन निभाने को राजा दशरथ ने किया, हर जगह यही बात है, बताइए इतनी बड़ी बात। शायद का करेक्टर ना मतलब खराब रूप में लोगों के आगे जाए, इसलिए ये बात परंपरा से चली आई तो बस चली आ रही है।
इसमें एक चीज और भी है, राजा दशरथ को ये बात मालूम है कि उन्होंने केकई के फादर के साथ जो है ये वायदा किया हुआ है, इसलिए जो राज्याभिषेक की सेरेमनी वो श्री राम की करने जा रहे हैं उसमें दो लोगों को इन्विटेशन नहीं भेजा जाता, एक केकई के राजा किंग ऑफ केकई और जनक को तो खैर क्यों नहीं भेजा गया मालूम नहीं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ये बात लिखी हुई है कि उनके मन में एक शक था कि अगर जो है केकई के प्रदेश के राजा यहां पर आएंगे तो वे बात उठा सकते हैं कि आपने जो हमारे साथ वादा किया था कि केकई का हाथ जो है आपको दे दें और उसके बेटे उससे जो पुत्र हो गद्दी पर बैठेगा, वो वादा कहां गया? वो बड़ी सभा में अगर सवाल उठा लेंगे तो मैं क्या करूंगा? और इसीलिए राज्याभिषेक के समय पर ना वहां पर भरत है ना वहां पर शत्रुघ्न है, इस बात का राजा दशरथ को मालूम है और इस बात को वो चौथे सर्ग के 24वें श्लोक और 25वें श्लोक और 26वें और 27वें श्लोक में क्या कह रहे हैं देखिए जरा क्या कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो अपने वो वशिष्ठ से बात करते हैं, कभी कभी श्री राम को से भी बात कर रहे हैं, बल्कि ज्यादातर वो श्री राम से बात कर रहे हैं। और क्या कहते क्या है 24वें श्लोक में? Let your friends vigilantly guard you on all sides tonight. For सेरेमनीज ऑफ दिस काइंड, किस तरह की जो उनका इंस्टॉलेशन होने जा रहा है, आर हैम्पर्ड बाई मैनी ऑब्स्टेकल्स. उनके मन में एक शक और शुबह है कि कहीं कोई किसी को खबर हो गई केकेई में, केकेई प्रदेश में, कि ये ऐसे होना जा रहा है, तो कहीं कुछ ऐसा ऊंच नीच ना हो जाए. श्री राम को वो चुकन्ना कर रहे हैं कि लेट योर फ्रेंड्स विजिलेंटली गार्ड यू ऑन ऑल साइड्स टुनाइट. एंड 25वें श्लोक में क्या लिखा हुआ है, योर इंस्टॉलेशन एज प्रिंस रीजेंट इन माई ओपिनियन मस्ट टेक प्लेस ड्यूरिंग द वेरी इंटरवल व्हेन भरत इज अवे फ्रॉम दिस सिटी. बताइए मैडम, ये 25वें श्लोक में जो लिखा है इसका क्या मतलब हुआ? वो कहते हैं कि तुम्हारा उसी वक्त राज्याभिषेक होना बहुत जरूरी है जब भरत यहां पर इस शहर में नहीं है. क्यों? उनके मन में ये बात है. आवाज आ रही मैडम?
बिल्कुल आ रही है सर. मैं तो बिल्कुल हैरान हूँ कि बताइए इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई गई. छुपाई गई है कि क्या इसका
छुपाई नहीं है. अब देखिए, छुपाई नहीं है, उसमें लिखी हुई है, हमें मालूम नहीं है, किसी ने नहीं छुपाई, हमने पढ़ने की कोशिश नहीं करी. प्रॉब्लम मैडम, मैं शुरू से जो है कई सालों से बोलता आ रहा हूँ, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते ही नहीं है. हम उनको जो है अगरबत्तियां दिखाकर कपड़े में लपेट कर आते जाते, सिर झुकाकर आगे निकल जाते हैं. अब ये जो बात इसमें लिखी हुई है, इसका आगे क्या चीज क्या है? देखिए, मैंने कंक्लूजन निकाला इन सारे इसमें राजा दशरथ के शेर से. ए मैन ऑफ प्रिंसिपल इज कमिटेड टू वन सेल्फ नॉट टू अदर्स एंड सो वाज राजा दशरथ. उनके मन में शक है, शुबह है, वो केकेई के पास जो है शायद इस बात को शेयर करने के लिए जाते हैं कि शायद मेरे उनके मन में चोर है. लेकिन जब केकेई इंसिस्ट करती है उन दो वरों की बात और अपने फादर के साथ किए हुए वायदे की बात उनको याद दिलाती है, तब राजा दशरथ का रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचत आ जाए, वो जाग जाती है और वो कहते हैं कि ए मैन ऑफ प्रिंसिपल इज कमिटेड टू वन सेल्फ नॉट टू अदर और सो वाज दशरथ. इसलिए वो अपने किए हुए वादे को निभाने के लिए अपने डिसीजन को चेंज कर देते हैं. ठीक है, अब क्या करें, अब तो मुझे ये करना ही पड़ेगा. ये है इनविजिबल शेड राजा दशरथ का, जिसके बारे में हमें नहीं मालूम. इसको बताने का मकसद क्या है? मेरा मकसद कोई राजा दशरथ को हल्का दिखाने का नहीं है. मतलब हमें आधी कहानी मालूम है कि दो वर दिए थे, हमें बाकी कहानी का बाकी हिस्सा नहीं मालूम कि सिर्फ दो वर ही नहीं थे, उनके पिता के साथ किया हुआ वादा भी था और दोनों चीजों का इतना बड़ा बोझ था. उस बोझ को लेकर राजा दशरथ जो है ये खबर सुनाने के लिए केकेई के पास खुशी के मारे में नहीं जाते, कहीं ना कहीं मन में शक है, शुबा है, डर है. वो थोड़ा सा टो लेने के लिए, चेक करने के लिए, जिसको कहते हैं कि क्या हालो हालात क्या है, उसको देखने के लिए जाते हैं. लेकिन उनको ये आभास नहीं होता कि कहीं इतना स्ट्रांग स्टैंड ले लेगी और उनको फिर अपना वायदा जब याद दिलाती है तो राजा दशरथ रघुवंश की रीत को निभाते हुए अपने वादे को पूरे करते हैं. ये बहुत छोटा सा
पर बहुत बड़ी बात
है. जी जी मैडम,
मैं कह रही हूँ बहुत बड़ी बात है. इसको छोटा सा अदृश्य दृश्य नहीं कह सकते, ये तो बहुत बड़ा अदृश्य दृश्य है.
जो इसमें जो इनविजिबल शेड्स है उसमें से कुछ एक शेड्स बड़े छोटे हैं, कुछ एक शेड्स बड़े लंबे हैं. तो ये बड़ा थोड़ा छोटा सा शेड था, मैंने इसलिए यहाँ से शुरुआत की. अब मैं आपको एक दूसरा शेड जो है इनविजिबल इसका बताता हूँ, रामायण वाल्मीकि रामायण का, जो थोड़ा सा इससे लंबा रहेगा, वो है शूर्पनखा का. अब आप बताइए, शूर्पनखा को हम सर इसी एंगल से जानते हैं या सुनते आए हैं कि वो बहुत जो है देखने में बड़ी बद्दी थी और उसका मन आ जाता है वगैरह वगैरह वगैरह, और फिर उसके नाक और कान काट दिए जाते हैं और वो रावण के पास रोते रोते जाती है, शिकायत लगाती है.
बिल्कुल.
लेकिन वाल्मीकि रामायण को जब हम पढ़ते हैं, शूर्पनखा सिर्फ सिस्टर ही नहीं है, वो अपने आप में एक करेक्टर और पर्सनैलिटी है जिसका स्टेट क्राफ्ट के ऊपर, शासन प्रबंधन के एक सब्जेक्ट के ऊपर बहुत जबरदस्त जकड़ है. यहां मैं कोई ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूं कि शूर्पनखा को अगर बहुत अच्छी नॉलेज है तो उसका ये एक्ट भी जो है अच्छा था, वो अलग चीज है. लेकिन देखिए, रावण रावण का इतना बड़ा साम्राज्य और उसमें जो है उसकी सिस्टर जो है वो भी बहुत अकलमंद है, कहाँ है उसकी अकलमंदी, उसको थोड़ा जान तो ले, पता तो चल जाए कैसे है वो अदृश्य उसका छिपा हुआ। मैं आपको बताता हूं, मैंने इसको जब पढ़ा तो मैंने इसका कंक्लूजन जो निकाला कि वो एक बहुत श्रीयुग और इंटेलिजेंट वुमन थी, उसको शासन प्रबंधन की बहुत अच्छी नॉलेज थी, और उसको गवर्नेंस जो है एक राजा को शासन कैसे चलाना चाहिए उसमें जो वीकनेसेस को उबार कर वो रावण के सामने रखती हैं वो वहां पर उसका उसकी नॉलेज सामने आती है, और स्पाई सिस्टम के बारे में उसकी बड़ी अच्छी नॉलेज। ठीक है मैडम, हम बात करते हैं कि हमने अपने देश में राम राज्य लेकर आना, भाई राम राज्य लेकर आना है तो राम राज्य अपनी प्रिंसिपल्स पर था, प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस के ऊपर था। सुशासन बाबू नाम रखने से तो सुशासन नहीं आ जाएगा ना, आपको सुशासन वाली सारी चीजें वो लानी पड़ेंगी। तो वाल्मीकि रामायण जो है वो एक ऐसा एक महाग्रंथ है जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, फिलॉसफी के लिए, वॉरफेयर के लिए, और ह्यूमन बिहेवियर के लिए, साइकोलॉजिकल एंगल से, फिलोसॉफिकल और इमोशनल एंगल से, किसी भी एंगल से देख ले वो एक संपूर्ण महाकाव्य है। तो उसी महाकाव्य के शुरूप नखा का जो इनविजिबल शेड है उसको मैंने किस तरह से ये उभारने की कोशिश की है वो आपके साथ शेयर करता हूं। अब यह है अरण्य कांड, उसमें जो है 33वां सर्ग जो है उसमें श्लोक नंबर 2, 3 और 8 अगर इसको हम देखें तो सबसे पहले तो वो राहुल को जाकर जो है गालियां निकालती है। गालियां निकालने का मतलब कि उसको जैसे कहते हैं कि लानते डालती हैं कि तुम सेंसेस की एंजॉयमेंट्स में जो है इतने डूब चुके हो कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रही कि एक राजा को शासन कैसे चलाना चाहिए। और उसको वो कहती है कि ऐसा राजा जो वल्गर सेंस एंजॉयमेंट्स में जो है डूब चुका हो तो उसको ज्यादा देर तक लोग गद्दी पर नहीं बैठे रहने देते। अब आप देखिए इन सारी चीजों को अगर हम आज के समय में कुछ इतिहास में उठाकर देखें, ऐसा हुआ है जब भी कोई शासक जो है अपने भोग विलास में लग गया, लूट खसोट में लग गया, तो कुछ समय के बाद प्रजा ने तंग होकर किसी ना किसी तरह से खुद से या किसी और तौर तरीके से उसको गद्दी से हटा दिया या मार दिया या षड्यंत्र हो गया या कुछ हो गया। शासक वही देर तक चलता है जो प्रजा के हित की बात करता है, और वो कहती है उसको कि यू आर undoubtedly childish of disposition and devoid of intelligence, तुम्हें अकल की कमी हो गई है, तुम्हें मालूम नहीं है ठीक क्या है गलत क्या है। अब वो क्या उसको क्या कहती क्या है इसके बाद कि रावण सुनो, राजा की क्वालिटीज एंड ड्यूटीज होती क्या है। ये अरण्य कांड के 33वें सर के श्लोक नंबर 4, 6, 16, ये 4, 6, 16 ऐसा नहीं कि 5वें और 7वें 8वें 9वें में कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने कुछ चुनिंदा से श्लोक जो है अपनी बुक में उठाए हैं जो मेरे को ज्यादा इंप्रेसिव लगे। तो चौथे श्लोक में वो क्या बोल रही है कि ऐसा शासक जो अपने अपने शासन प्रबंध के अफेयर्स को पर्सनली अटेंशन नहीं देता तो उसका उसका सारा शासन जो है वो बर्बाद हो जाता है, वो नीचे डूब जाता है। और फिर वो कहती है कि अगर आपके किसी वजह से किसी राजा की कोई टेरिटरी जो है उससे छिन गई और अगर उसने उसको वापस नहीं ली या उसको वापस लेने की कोई कोशिश नहीं की तो वो तो ऐसा होगा कि जैसे कि समुन्द्र में पहाड़ डूब जाते हैं ऐसे ही उसका जो है राज्य जो है वो डूब जाता है। और ऐसे शासक को इवन हिज ओन पीपल किल्ड इन एडवर्सिटी, ऐसा भी हो जाता है, या उसको वो डिसओन कर जाते हैं जो इगोइस्टिक हो चुका हो, भोग विलास में लग गया हो, जिसको कुछ शुद्ध बुद्ध नहीं है अपने राज अपने प्रदेश की। और फिर वो 17वें श्लोक में पहले फिर उसको गालियां निकालती हुई या क्रिटिसाइज कहती है कि रावण तेरे को पता होना चाहिए कि ऐसा शासक जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता एंड इज नॉट एप्रीहेंसिव इन द फेस ऑफ डेंजर्स, बहुत ही जल्दी वो अब उसकी अपनी गद्दी से हाथ जो है धो बैठता है। तो इस तरह से उसको जब बताते बताते रावण उससे पूछता भी बात क्या है, वो कहती है तुम्हारे खर एंड दूषण नाम के दो जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सिपाहीदार थे, उनके साथ जो है वो सैकड़ों जो है राक्षस सिपाही भी हुआ करते थे, तुम्हें खबर है कि वो मारे जा चुके हैं, तुम्हारे सैकड़ों सिपाहियों को और तुम्हारे सिपा सालारों को किन्हीं ने मार दिया है, तुम्हें किसी ने आकर कोई खबर दी है? तुम्हारे इलाके में जो है किसी दूसरे देश के राजकुमार किसी तीसरे देश के लोगों के साथ, यहां पर वो मेंशन कर रही है कि भाई और भी उनकी सपोर्ट में हो गया, एज्यूम करते हुए तुम्हारे प्रदेश की टेरिटरी में और देश के लोग और राजकुमार आकर जो है तुम्हारे ही सिपहसालारों को मार रहे और तुम्हें कोई खबर नहीं हो रही। तब वो रावण को स्पाई सिस्टम के बारे में बात करती है। ये है 43rd सर्ग है अरण्यकांड का, उसमें मैंने पांचवा, नाइन्थ और टेंथ श्लोक उठाया है खास करके। उसमें क्या लिखा क्या है पांचवे श्लोक, वो कहती है कि जो राजा जासूस अपॉइंट ही नहीं करता तो फिर वो जो है अपनी प्रजा के ऊपर कंट्रोल कैसे करेगा? ऐसे ऐसे से तो लोग ही जो है दूर होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? वो उनको कहती क्या है, देखिए दूरदर्शी का, वो उसको बोलती कि दूरदर्शी का मतलब क्या होता है? दूरदर्शी का मतलब है रूलर्स ऑफ मेन आर एबल टू परसीव रिमोट थिंग्स थ्रू देयर स्पाइस, हेंस दे आर कॉल्ड फार साइटेड। दूरदर्शी उसको बोलते हैं जो अपने जासूसों की मदद से दूर दराज में होने वाले इंसिडेंट्स, घटनाएं और चीजों और लोगों के ऊपर नजर रख सके। तुम्हारे तो कोई जासूस है ही नहीं, तुम्हारी बाउंड्रीज जो है वो खाली पड़ी हुई है, वहां पर अटैक हो रहे कोई तुम्हें अगर बता नहीं रहा। तो ऐसे में दोज रूलर्स ऑफ मैन हुज स्पाइज एंड कॉफर्स एंड पॉलिसी आर नॉट अंडर देयर कंट्रोल, वो फिर क्या है? वो एक लेमैन? तुम एक शासक हो या क्या हो? कुछ नहीं है तुम्हें पता तो अपने शासन के बारे में। और फिर वो उसको क्या बोलती है, 11वें 12वें और 14वें श्लोक में क्या लिखा है? आई कंक्लूड यू टू हैव नॉट अपॉइंटेड स्पाइस इन योर किंगडम, कि तुमने जो है ये जो स्पाइस वहां अपॉइंट ही नहीं किए हैं, इसका मतलब कि तुम्हारे मंत्री जो है वो उनमें अकल ही नहीं है तुम्हें अच्छी सलाह दे सके। तुम्हारे काउंसलर जो है वो टोटली अनट्यूटेड है, दे डू नॉट नो ऑफ योर ओन पीपल हैविंग बीन किल्ड, उनको मालूम ही नहीं है कि वहां पर क्या हो गया क्या नहीं हो गया। इसके अलावा ऑफकोर्स फिर वो बताती कि खरदूषण जो है 14,000 के गरीब जो है वो मारे जा चुके हैं, और उसको वो कहती है यू आर केयरलेस एंड ए स्लेव ऑफ पैशन। आवाज आ रही है मैडम? वो उनको कहती है
बिल्कुल
आप केयरलेस हो, स्लेव ऑफ पैशन हो, आपके मंत्री आपके सलाहकार आपको कोई सलाह नहीं दे रहे, कोई फीडबैक नहीं दे रहे, वो टोटली अनस्यूटेड है और तुम जो है भोग विलास में लिप्त हो चुके हो। तो ऐसा राजा जिसका स्पाई सिस्टम फेल हो चुका हो, जो दूर दराज के प्रदेशों में होने वाली गतिविधियों पर ना कोई खबर मिल रही हो ना कोई निगाह रख रहा हो, उसका बर्बाद होना पक्का है। अब देखिए ये शूर्पणखा चीज क्या है? शूर्पणखा को स्पाई सिस्टम के बारे में कैसे मालूम? शूर्पणखा को जो है किंग की जो है ड्यूटीज और उसके क्या होते हैं फर्ज पूरे होते हैं उसके बारे में कैसे मालूम? लोग जो है एक राजा के खिलाफ कब कब क्या हो सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं, वो कैसे मालूम? ये जो शेड मैंने उठाने की कोशिश की है शूर्पणखा की, ये मैंने इस एंगल से उठाया है कि जब भी वाल्मीकि रामायण को पढ़ते हैं उसको महाकाव्य हम क्यों बोलते हैं? महाकाव्य हम क्यों बोलते हैं? इसलिए क्योंकि वो उसमें इतने रंग हैं कि आप कोई भी करेक्टर उठाकर देख लो आपको उसमें से कोई ना कोई विजडम की बात ही मिलेगी, चाहे वो श्री राम की तरफ है चाहे वो रावण की तरफ है। जब आगे मैं अगले एपिसोड्स आएंगे तो मैं आप लोगों के साथ इसको कुंभकर्ण को शेयर करूंगा। जैसे कि शूर्पणखा के बारे में हमें सिर्फ इतना ही मालूम है कि नाक कान काट दिए और रोती हुई चली गई और बहुत कुरूपा थी, कुंभकर्ण के बारे में भी हमें सिर्फ इतना ही मालूम है कि 6 महीने सोता था 6 महीने खाता था, लेकिन जो उसका लेवल ऑफ नॉलेज है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और रोल ऑफ किंग के ऊपर वो हमें नहीं मालूम। कुंभकर्ण तो शुरू में लड़ने से मना कर देता है और फिर वो पूछता है कि मुझे पहले ये बताया जाए कि ये जो भी आपने जो है युद्ध करने का फैसला लिया आपने पर्सनल कैपेसिटी में लिया या ऑफिशियल कैपेसिटी में लिया। खैर मैं कुंभकर्ण की बात डिटेल में तो तभी बताऊंगा, यहां पर जो है मैं शूर्पणखा के इस शेड के बारे में बताना चाहता था। और जो तीसरा शेड है वो थोड़ा काफी उसमें टाइम लगेगा।
सर ये जो राक्षसों का वर्णन आया है जहां पे भी जो मिथ बन गए समाज में, तो वो एक ऐसे बन गए कि बस वो बिल्कुल कुरूप और उनके सींग निकले हुए लंबे लंबे दांत, और वास्तविकता तो ये है कि राक्षसी तो प्रवृत्तियां होती है ना, कोई राक्षस कोई चेहरे से थोड़ी ना दिखता है, और ये एक मिथ बन गया समाज में, तो ये तो बहुत बड़ी बात है आप जो मतलब इस चीज को बता रहे हैं। हम लोग को पता ही नहीं थी ये चीजें, कुंभकर्ण का और शूर्पणखा का जैसे अभी आपने बताया, ज्यादातर टीवी में आपके वाली बात देखकर कि बस वो लंबे लंबे दांतों वाला कोई कुरूप सा इंसान है, यही
यही तो
एक
प्रॉब्लम
चित्र
है।
आता है हमारे
हम तो
सामने बिल्कुल।
ग्लैमराइज वर्षन ऑफ एपिक्स का देखते आ रहे हैं, जिनमें सिर्फ ग्लैमर दिखाया। ठीक है, ग्लैमर भी दिखाना होता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि राक्षस की प्रवृत्तियां जो है वो है इंपॉर्टेंट, ना कि उसकी फिजिकल। आपको दुनिया
जी
में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बहुत देखने में बड़े सुंदर, स्मार्ट,
बिल्कुल
हैंडसम होंगे, लेकिन उनकी उनकी जो है उनकी प्रवृत्तियां जो है वो
प्रवृत्तियां
राक्षसों से भी
होंगी।
बदतर होंगी। तो ये तो है ही है।
कई लोग इतने होते हैं लेकिन उनकी प्रवृत्तियां बहुत अच्छी होती हैं तो हम उनको
एनी
देवी देवता मानने लगते हैं, तो ऐसे ही होता है सर।
हाउ, अब थोड़ा सा वो तीसरा
बिल्कुल
शेड 10-15 मिनट का है, उसकी तरफ को चलते हैं। तीसरा शेड मैं जो आज
जी बिल्कुल
बात करने जा रहा हूं वो है श्री हनुमान बजरंगबली। अब फिर बात वही आ जाती, बजरंगबली जी को हम किस
जी
किस किस तरह से देखते हैं। बजरंगबली जी को हम देखते हैं कि बहुत शक्तिशाली है, बहुत अच्छी बात है, बहुत शक्तिशाली है, इसमें कोई शक ही नहीं है। शक्तिशाली है, इसलिए जितने भी पहलवान होते हैं वो बजरंग अखाड़ा बजरंगबली को प्रणाम करते हैं, मानते हैं, लंगोट बांधते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन हनुमान जी में और भी बहुत क्वालिटीज हैं।
जी
हमें हमें उस पर्सनैलिटी को जरा थोड़ा सा और अच्छी तरह से जानना चाहिए कि वो सिर्फ यही नहीं है कि शक्तिशाली है, उनमें और बहुत सी क्वालिटीज हैं। कौन सी क्वालिटीज हैं? जब हम उन क्वालिटीज को जान लेंगे, मेरा ख्याल है कि हमारे मन में बजरंगबली के प्रति जो है आदर और श्रद्धा का लेवल जो है और बहुत सैकड़ों गुना बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। कौन सी है उनमें उनमें ऐसी ऐसे क्वालिटीज, आइए जानने की कोशिश करते हैं जो वाल्मीकि रामायण में लिखी हुई है। देखिए, बजरंगबली का आमना सामना सबसे पहले श्री राम के साथ होता है, जब वो भेष बदल कर मिलने जाते हैं। शायद आपको मालूम होगा मैडम कि वो सुग्रीव कहता है कि जाओ जाकर देखो कौन है, तो थोड़ा भेष बदल कर जाते हैं। आपने हमने फिल्मों में भी ये देखा होगा कि
जी
शायद वो ब्राह्मण का भेष बदल कर या कुछ और तरह सा भेष बदल कर वो मिलने जाते हैं। आज जब वो मिलकर वापस चले जाते हैं तो
जी
श्री राम जो है उनकी एक असेसमेंट कर रहे हैं हनुमान जी। अब ये जो असेसमेंट है, अब इनको देखिएगा कि इनमें हनुमान जी की क्वालिटीज क्या आ रही है। वो भरत से बात कर रहे हैं श्री राम कि हे भरत, ये जो इंसान या जो भी मेरे को भी हमें मिलने आया था, ये चला तो गया, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूं। ये किष्किंधा कांड के तीसरे सर्ग के 28वें 29वें श्लोक में क्या लिखा हुआ है, वो कहते कि भरत टू स्पीक इन द वे, जिस तरह से वो बातचीत कर रहा था, मैं कह सकता हूं इस तरह की बातचीत वही कर सकता है जिसने ऋग्वेदा पढ़ा हुआ, जिसने यजुर्वेद पढ़ा हुआ हो,
जी
जिसको सामवेद की नॉलेज हो। बोले कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर वन हु हैज नॉट स्टडीड ऋग्वेदा विद एन आई टू इट्स मीनिंग, नॉर मेमोराइज यजुर्वेदा एंड हैज नो नॉलेज ऑफ सामवेदा। ये जो बातचीत करके गया है, इससे मैं समझ गया कि इसका लेवल ऑफ नॉलेज कितना हाई है। अब ये देखिए, इसके अलावा बोले कि इससे भी बड़ी बात जो इन्होंने शब्द बोले हैं, एक तो होता है ना कि बातचीत के कंटेंट्स क्या है, वो कंटेंट से समझ गए कि इसका लेवल ऑफ नॉलेज क्या है। बोले कि इसके शब्दों से पता चलता है कि एंटायर रेंज ऑफ संस्कृत ग्रामर हैज बीन स्टडीड बाय हिम इन मेनी वेज। ये इसका भाषा, इनका भाषा के ऊपर कमांड जो है बताती है कि संस्कृत भाषा जो है तो इन्होंने इन्होंने कई कई एंगल से स्टडी की हुई है, क्योंकि क्यों नथिंग हैज बिन रॉन्गली वर्डेड बाई हिम दो स्पीकिंग ए गुड डील विच। बातें बहुत हुई, एक भी शब्द, एक भी सेंटेंस, एक भी चीज थी उन्होंने गलत नहीं बोली है, उनका भाषा के ऊपर कमांड, भाई मैं तो मान गया व्याकरण, सॉरी हाँ व्याकरण का जो है मैं तो मान गया। कि ऐसे कैसे हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा ये तो उन्होंने जो कहा कहा, फिर वो श्री राम भरत से क्या बोल रहे हैं कि भरत सिर्फ भाषा या व्याकरण का ज्ञान होना या कौन सी किताबें पढ़ रही हैं, इससे अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने नोटिस की है कि इनके चेहरे पर, इनकी आंखों पर, इनके फोरहेड पर, इनके आईब्रोज पर कोई भी फॉल्ट ऑफ एक्सप्रेशन मैंने नहीं देखा। भाई कोई एक एक इंसान भेष बदल कर गया है तो वो कोशिश करेगा कि इनको पता ना चले मैं कौन हूं, है ना, भेष बदल कर गए तो वो नहीं के पता ना चल जाए मैं कौन हूं। जब वो बात कर रहे हैं तो वो चाहेंगे कि मेरी बातों से ये पता ना चल जाए मैं कौन हूं, क्योंकि वो तो उनका उनकी टो लेने गए हुए हैं। तो ऐसा बंदा जो है उसकी आंख में या कहीं ना कहीं जो है वो चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गया, क्योंकि कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा होगा। वो बोल रहे हैं कि इनके चेहरे पर, आंखों में, फोरहेड और आईब्रोज में कोई कोई एक्सप्रेशन में कोई मैंने फॉल्ट ही नहीं देखा। और इससे भी बड़ी बात कि ये जो बात कर रहे थे, ये जो शब्द बोल रहे थे, ये अपने गले से बनाकर नहीं बोल रहे थे, इनके दिल से, इनकी छाती से, इनकी चेस्ट से जो है वो शब्द वाणी उभर कर बाहर आ रही थी। कभी होता ना कि आप शब्दों को अपने गले से जो है तोड़ मरोड़ कर बोलने की कोशिश करते हैं, एक आर्टिफिशियल सा एंगल देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप मन से बात कर रहे हैं तो आप गले से नहीं, आप दिल से बात कर रहे होते हैं। इससे भी और बड़ी बात वो बोलते हैं कि ये जो इनकी जो स्पीच थी, ये 32वें श्लोक में लिखा है कि ही अटर्स ए डिस्टिंक्ट एंड रिमार्केबल स्पीच जो ग्रामेटिकली करेक्ट है, फ्लुएंट है एंड डिलाइटफुल है। अब देखिए, एक मीटिंग हुई और एक मीटिंग में श्री राम ने हनुमान जी की ये जो एक एक इंप्रेशन जो उन्होंने बिठाया, उससे जो उनकी क्वालिटीज उभारी हैं, उससे हमें क्या पता होना चाहिए कि सिर्फ शक्तिशाली नहीं है, सिर्फ जो है ऐसा नहीं है कि वो बहुत वीर हैं, वो बहुत नॉलेजेबल भी हैं, बहुत पढ़े लिखे भी हैं, विद्वान भी हैं। और उस जमाने में तो यही होते थे ना कि वेद ही होते थे, तो वेद भी पढ़े हुए हैं, ग्रामर भी पढ़ी हुई है, और उनको जो है बातचीत करने की कला में भी मास्टरी है। देखिए ये बजरंग बली के शेड के बारे में हमें मालूम ही कि उनमें ये भी क्वालिटी थी। खैर जी,
वानर बना के छोड़ दिया,
वानर बना के छोड़ दिया
जी, वानर
तो
बना
है
के
जो
छोड़
सिर्फ
दिया।
नाम ने असेसमेंट की है। अब मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं बजरंग बली को। सुंदरकांड, घरों में सुंदरकांड का पाठ होता है, औरतें बैठ जाती हैं, वो पढ़ती हैं, तालियां बजाती हैं, हमारे घर में भी होता है। मैं अपनी वाइफ से पूछता हूँ भी सुंदरकांड में ये चीजें लिखी हुई हैं, जरा जरा इसको खोल कर देखो। सुंदरकांड के 30वें सर्ग के श्लोक नंबर 8, 11, 13, 17 वगैरह ऐसे ऐसे जो है आगे बहुत सारे श्लोक हैं। अब यहां पर जो मैंने क्या उभारने की कोशिश की है, हनुमान जी में एक रीजनिंग स्किल है, तर्क करने की एक जो उनमें एक कहते हैं कि शक्ति कह लीजिए या एक स्यानापन कह लीजिए, वो इंटेलिजेंसिया कह लीजिए, वो कैसे मैं बताता हूं। अब अशोक वाटिका में पहुंच गए, वो उन्होंने सीता जी को देख लिया, पहचान लिया। अब वो अपने मन में कुछ विचार कर रहे हैं, ये विचार क्या है, इसी को रीजनिंग स्किल बोलते हैं। आपके मन में कोई चीज आ रही होती है ना, मैं ये करूं कि वो करूं, आप उसको जो है हर एंगल से जो है असेस करते हो, ऐसा करें तो वो होगा, वैसा करें तो क्या होगा, ऐसा ना करूं तो वो होगा, वैसा कर दिया ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, इसी को रीजनिंग स्किल करते हैं। और उसी से जो अपने मन में जो है आप सारा कैलकुलेट करके एक कैलकुलेटेड जो है डिसीजन लेते हो, विच इज बेस्ड अपॉन योर लेवल ऑफ नॉलेज, योर इंटेलेक्चुअल स्किल, योर रीजनिंग स्किल एटसेट्रा। तर्क वितर्क, तर्क वितर्क, अब तर्क कुतर्क नहीं, तर्क वितर्क, तर्क वितर्क करके वो उसमें क्या लिखा हुआ है। अब वो अपने मन में क्या विचार कर रहे हैं कि मैं करूं तो क्या करूं। वो सोच रहे हैं कि अगर मैं इस लेडी को कोई एश्योरेंस या री एश्योरेंस दिए बिना मैं वापस चला जाऊं, मैंने देख लिया, उन्होंने कहा कि जाओ देखो कहाँ है, खोजो जाकर कहाँ है, अब मैंने खोज लिया, अशोका वाटिका में बैठे हुए हैं, अगर मैं ऐसे ही चला जाऊं, इफ आई रिटर्न विदाउट एश्योरिंग, तो मेरा डिपार्चर जो है वो तो फिर ऐसे क्या, मेरा आना जाना ऐसे क्या मायने होगा या फिजूल हो जाएगा, ये अपन उनके मन में ये विचार आ रहा है। ओके, फिर वो सोचते हैं कि अब मैं उससे बात कैसे करूं,
जी
विद इन द साइट ऑफ द जितनी ये राक्षसियां बैठी हुई हैं, मैं उनसे बात कैसे करूं, मैं तो पशुपंच में पड़ गया। फिर वो अपने मन में एक सवाल फिर अपने आप से करते हैं कि अगर श्री राम ने मेरे से पूछा कि क्या मैसेज तुमने उनको दिया, क्या मैसेज उन्होंने मेरे को दिया, तो मैं अगर मैं बिना मिले ही जो चला गया तो फिर मैसेज तो रह ही गया, इसका मतलब कि मेरे को मिलना है। अब उन्होंने कहते हैं ना कि स्टेप वन अपने मन में रीजनिंग करके क्लियर कर लिया, मिलूं कि ना मिलूं, मिलूं तो कैसे मिलूं, अगर मैं ऐसे चला गया तो उन्होंने मेरा मैसेज नहीं दिया, उसका मैसेज नहीं लिया, तो वो कहते कि नहीं मिलना तो है। ओके, ये पहला उन्होंने रीजनिंग करके डिसीजन ले लिया। फिर वो सोचते हैं कि आई एम नॉट ओनली एक्सीडिंगली स्मॉल इन साइज, मैं तो मंकी भी हूं। अब मैं क्या करूं, जब मैं बात करूंगा तो मैं बात संस्कृत भाषा जो इंसान जैसा कि ये है बोलते हैं, मैं उसमें भाषा में बात करूं क्या, वो अपने मन में सोच रहे हैं। तो अगर मैं ब्राह्मणों की तरह संस्कृत भाषा बोली तो सीता जी कहीं डर ना जाए कि रावण ने किसी को भेदिया बनाकर भेज दिया, तो मैं क्या किस भाषा में बात करूं उनसे। फिर वो 19वें श्लोक में लिखा हुआ है कि बेस्ट यही रहेगा मैं उस भाषा में बात करूं जो अयोध्या के आसपास बोली जाती है। जब मैं उस भाषा में बात करूंगा जो अयोध्या के आसपास रहने वाले लोग बोलते हैं, तो वो होगा, एक तो मैं अपना मतलब जो है उनको मैं समझा पाऊंगा और वो समझ जाएंगी कि मैं वहीं से आ हुआ। इस तरह से जब वो अपने मन में वो कर रहे हैं, तो वहां पर जो 35वां श्लोक है उसमें भी लिखा हुआ है कि व्हाट वाइज मैन शुड एम्बार्क ऑन ए ड्यूबियस अंडरटेकिंग, कि ऐसे में एक जो अकलमंद आदमी होता है जब उसके मन में कंफ्लिक्ट आ जाए, अनसर्टेनिटी हो जाए, तो उसको किस तरह से जो डिसीजन लेने चाहिए। तो उन्होंने कहा अगर मैंने ओपनली जाकर बात कर ली तो भी प्रॉब्लम है, इसलिए मेरे को चुपके से बात करनी है, मुझे उस भाषा में बात करनी जो अयोध्या के लोग बोलते हैं, श्री राम का मैसेज भी देना है, उनका मैसेज लेकर भी जाना है। ये अपने मन में वो तर्क करके एक अपने आप को एक एक डिसीजन मेकिंग सिचुएशन पर लेकर आते हैं, ठीक है जी। अब वो क्या क्या सोच कह रहे हैं इसके साथ साथ कि
जी
एक जो डिसीजन होता है, एक जो रूलर जो है डिसीजन लेता है अपने मिनिस्टर्स के साथ इन कंसल्टेशन विद मिनिस्टर कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो जो थॉटलेस मैसेंजर के थ्रू अगर भेजा जाए तो वो फैसला जो है ठीक नहीं होता, क्योंकि मैसेंजर जो है उनको बहुत सोच समझ कर जो है आगे कन्वे करना होता है ना। तो मैं कैसे मैं करूं जिससे मेरा पर्पस जो है वो फ्रस्ट्रेट ना हो जाए और मैं थॉटलेसनेस के अगेंस्ट भी हूं और मैं सीता जी को एक एश्योरेंस भी मिल जाए और श्री राम को मैसेज भी मिल जाए। ये सारी चीजें जो अपने मन में जो है वो सोच रहे हैं, अपने आप में आर्गुमेंट दे रहे हैं, इन सबसे मैंने ये निकाला कि हनुमान जी में एक बड़ी जबरदस्त रीजनिंग पावर भी है, रीजनिंग पावर भी है, ठीक है जी।
जी अब बताइए सर, हनुमान जी को तो लोग कहते हैं कि वानर प्रवृत्ति थी, तो पेड़ों को फल तोड़ने, पेड़ों को तहस नहस करना, और कहां वो इतनी सोच विचार कर रहे हैं कि छोटी सी चीज के लिए भी वो
अच्छा,
इतना तर्क वितर्क कर रहे हैं, रीजनिंग है उनके अंदर, तो
अभी मैं और
कितना
बताता
गलत
हूं
चित्रण हम लोग
हनुमान
के
जी
सामने
के,
अब तक।
हनुमान जी की
बताइए।
जो है श्रेयुडनेस भी है सुंदरकांड में दिखाई गई है।
जी बिल्कुल।
ये है कौन से वाला सर्ग है, इसमें थोड़ा मिट गया, मैं बता दूंगा, वो सुंदरकांड के सर्ग में वो क्या बात कर रहे हैं कि नेगोशिएशन गिफ्ट एंड सोइंग सीड्स ऑफ डिसेंशन। उन्होंने कहा कि चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो है जब आप राजा से जो कुछ एक एक राजा दूसरे राजा से डील कर रहा है, या तो उससे नेगोशिएशन करे, नेगोशिएशन करके एग्रीमेंट कर ले, या उसको कोई गिफ्ट दे, गिफ्ट देकर अपना मित्र बना ले, या जो है उसके उसके राज्य में उसके ग्रुप में सीड्स ऑफ डिसेंशन मतलब मतभेद फैला दे, और चौथा है कि उसको सजा दे दे। ठीक है ना, चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए हनुमान जी जो है, अब यह कि उन्होंने रावण के सामने जाना है, वो रावण के सामने जाना है तो हम हमें हमें ये बताया गया है कि उन्होंने अपने आप को बदवा लिया था, ठीक है, चाहे अपने आप को बदवा लिया चाहे जो मर्जी कहो, लेकिन वो ये अपने मन में रीजनिंग करके ये फैसला कर चुके हैं कि सिर्फ मैसेज लेने देने से बात नहीं बनेगी, मुझे जो है इसकी पूरी पावर, इसकी अथॉरिटी, इसकी शक्ति, इसकी मिलिट्री, इसका कितना क्या है, कितने मिनिस्टर है, इसकी सारी एक असेसमेंट करनी है, क्योंकि अगर कल को युद्ध होगा जो मैं इनपुट्स लेकर जाऊंगा, मैं उनको बताऊंगा कि लंका कितनी बड़ी है, कितने मंत्री है, कितनी फौज है, कितने परकोटे हैं, कहां क्या है, मैं सारी चीजें करनी है। इसके लिए जो है वो अपने मन में क्या सोच रहे हैं कि इस तरह दूसरा जो दुश्मन कह लीजिए या दूसरा राजा होता है, चार तरीके होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, नेगोशिएशन के, गिफ्ट के, सोइंग सीड्स ऑफ डिसेंशन के, और चौथा होता है युद्ध करके उसको पनिश करने के, ठीक है। अब वो फिर वो सोच रहे हैं कि ये जो राक्षस है ना, इनके साथ नेगोशिएशन से बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये ऐसे ही होते हैं, नेगोशिएशन करने का इनका इनका जो है वो इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं होता, और गिफ्ट देने से भी बात नहीं बनेगी क्योंकि इनके पास तो पहले ही बहुत दौलत है, और तीसरे जो है इनमें मैं मतभेद भी नहीं कर सकता क्योंकि इनमें सत्ता का मद ऑलरेडी इतना आ चुका है कि इनके इनके लोगों के बीच में मैं मतभेद नहीं हो सकता, इनको जो है मुझे ताकत ही दिखानी पड़ेगी, इनको किसी तरह की पनिशमेंट ही देनी पड़ेगी, इनको एक एग्जाम्पल देनी पड़ेगी कि श्री राम का दूत जो है वो सिर्फ दूत ही नहीं है, उसमें मिलिटरली पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी भी इतनी पावर है। देखिए वो पूंछ में आग लगा दी, उन्होंने लंका जला दी, बस इतना ही मालूम है हमें। ये सारी चीजें वो प्लान कर रहे हैं, वो प्लान कर रहे हैं कि ये चार तरीकों में से इन राक्षसों के साथ चौथा तरीका मैं अडॉप्ट करूंगा, इनको मैं शक्ति का प्रदर्शन करूंगा, इनको थोड़ी पनिशमेंट दूंगा, इनको थोड़ी झलक दिखाऊंगा कि ये जिनके साथ वो पंगा ले लिया रावण ने, वो उसकी फौज कैसी है, ठीक है जी। अच्छा फिर
इन्होंने
वो
तो
अपने अपने मन में बात कर रहे हैं कि देखो वो अपने मन में, देखिए वो बात कर रहे हैं कि कोई भी दुनिया में काम करना हो ना, चाहे वो छोटा ही हो, उस काम को कंप्लीट करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं छठे श्लोक में सुंदरकांड के उसमें कि ही एलोन इज कैपेबल ऑफ अकम्प्लिशिंग ए पर्पस हु नोज टू डू ए थिंग इन मेनी वेज। एक काम को करने के कई तरीके होने चाहिए, यहां पर दुश्मन को टेम करने के, काबू करने के चार तरीके हैं, मैं यहां पर चौथा तरीका लगाऊंगा, एक ही तरीका नहीं, बंदे को कई तरह के तरीके होने चाहिए। फिर वो अपने मन में सातवें श्लोक में क्या बात कर रहे हैं कि अगर मैं वापस चला गया सुग्रीव के पास, हैविंग एसर्टेन्ड द ट्रुथ कि हु विल प्रीडोमिनेट इन एन एनकाउंटर बिटवीन द एनमी एंड अवर सेल्स, के दुश्मन और हमारे बीच में युद्ध होने पर कौन जो है हावी हो जाएगा, एंड ऑल्सो हैविंग डिटरमिन्ड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इन दिस वेरी जर्नी, तभी जो है मेरे मास्टर की जो सही कमांड जो है मैं पूरी करूंगा रियल सेंस में। इसलिए नौवें श्लोक में लिखा है मीटिंग रावण, हिज बॉडी ऑफ मिनिस्टर्स, हिज ट्रूप्स, हिज चैरियटियर, एंड कन्वीनियंटली रीडिंग द डिजाइन एनश्राइंड इन हिज हार्ट एंड असर्टेनिंग हिज स्ट्रेंथ, आई शैल रिटर्न फ्रॉम दिस प्लेस आफ्टरवर्ड्स। ये मैडम ये नाइन्थ श्लोक में ये जो चीज लिखी है ये सारा निचोड़ है उनकी उनकी नॉलेज का, उनके इंटेलिजेंसिया का, कि अपने मन में सारा वो परसुएट अपने आप को करके रावण को मिलना है, मंत्रियों को मिलना है, उसके ट्रुप्स के बारे में, चैरिटियर उस जमाने में रथ कितने थे, हाथी कितने थे, और उसके दिल में क्या चल रहा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये सारी चीजें पता करके ही मैं वापस जाऊं। जी अच्छा, अभी बहुत सारे और हैं लेकिन मैं समय की सीमा को देखते हुए सिर्फ 5 मिनट, अब मैं थोड़ा सा आपको एक झलक दिखा देता हूं फिलोसॉफिकल हनुमान। मैंने उनकी जो है परसुएसिव स्किल्स के बारे में बताया, उनकी नॉलेज के बारे में बताया, ग्रामर से लेकर वेदा से लेकर उनकी श्रेयुडनेस के बारे में बताया, और मैं थोड़ा सा बताऊं कि हम हनुमान जी को फिलोसॉफिकल एंगल से तो कभी जानने की कोशिश नहीं की। 65वें सर्गा के श्लोक 3, 4, पांच और छह, सिर्फ चार श्लोक है, ये मैं थोड़ा सा मेंशन करता हूँ। वो क्या क्या देखिए, वो देखिए बात क्या कर रहे हैं हनुमान जी, वो कह रहे हैं ब्लेस्ड आर दोज ब्रॉड माइंडेड ग्रेट सोल्स, वो महान आत्माएं जो हैं वो बहुत भाग्यशाली और बहुत ब्लेस्ड होती हैं जो अपनी विजडम में अपने अंदर के आए हुए गुस्से को काबू कर लेती हैं, जिस तरह से आग को पानी बुझाती है, आग को जलती आग को पानी बुझाता है, जलती आग को जिस तरह से पानी बुझाए, इस तरह से अपने दिल के अंदर के गुस्से को काबू करने वाले लोग जो हैं वो बहुत ही सयाने होते हैं। अब देखिए गुस्से में क्या क्या हो जाता है ये सबको मालूम है, हम सबने सुना हुआ है इसी बात को, जो है आज से हजारों साल पहले वाल्मीकि रामायण को, वाल्मीकि जी को कैसे पता था, और उन्होंने हनुमान जी के मुंह से ये कहलवाया। अब वो क्या कहते हैं, एंग्री मैन क्या नहीं कर सकता, ऐसा कौन सा पाप है जो एंग्री मैन नहीं कर सकता, ही हु इज एंग्री मे किल इवन हिज एल्डर्स, एन एंग्री मैन मे इंसल्ट इवन पायस सोल्स इन हार्श टोन्स। चौथे श्लोक में लिखा है ये जो एंग्री मैन है वो फिजिकली किसी को मार सकता है, अपने से बुजुर्ग को भी, प्यारे को भी, और अपनी जुबान से निकले हुए शब्दों से उनकी आत्मा को भी मार सकता है। देर इज नो इनक्विटी एनीवेयर विच कैन नॉट बी परपेट्रेटेड बाई एन एंग्री सोल एंड नो एब्यूसिव लैंग्वेज विच कैन नॉट बी अटर्ड बाई हिम। इंसान जब गुस्से में आए तो ऐसी कोई भी गंदी और गाली नहीं है जो वो ना निकाल पाए, इसलिए he alone is truly called a man who drives away by virtue of sheer forbearance the anger that has sprung up in his heart even as a snake casts off its throat। जिस तरह से सांप अपनी किंचली को उतार देता है, उस तरह से इंसान में जब गुस्सा आए, इस तरह से उसको झटके से अपनी नेकी की मदद से गुस्से की किंचली को उतार कर फेंक देना चाहिए। ये बहुत सारे और भी चीजें हैं फिलोसॉफिकल हनुमान में भी, लेकिन मैंने सिर्फ तीन या चार श्लोक को कहा, क्योंकि इससे ज्यादा मैडम मेरे लिए फिर बोलना भी मुश्किल हो जाता। आई थिंक इट्स ऑलरेडी ऑलमोस्ट 40-45। तो आज मैंने झलक दिखाई है थोड़ी सी, अगले अगले एपिसोड्स में मैं और शेड्स के बारे में बात करूंगा, इसके बारे में मैं कौशल्या जी के बारे में बात करूंगा, मैंने जैसे बताया था एक कुंभकर्ण के बारे में बात करूंगा, और एक और मैं शेड में सोचूंगा कौन है उनकी उन्हीं विजडम को, फिलोसफी को, और उन सारी चीजों को उबार कर अपने लोगों सभी लोगों के सामने रखूंगा जिनके बारे में हमें नहीं मालूम। मकसद यही है कि हमें अपने ग्रंथों में छुपी हुई अकल की सयानी चीजों को जानना और समझना चाहिए। धन्यवाद
जी सर। और सर कुछ जो है वाल्मीकि रामायण में है और उसी से आपने पढ़ा
नहीं,
और
मैं तो ये बताया कर रहा हूं,
और मतलब लोगों के अंदर ये समझना चाहिए कि कोई कपोल कल्पनाएं हैं ये,
और किसी को डाउट हो तो वो ईमेल पर पूछ लेंगे। ये चीज आपने जो बोली थी, एक बार एक कथावाचक है वो एक कथा सुना रहे थे, बहुत मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े हैं, तो मैंने उनको यही बात बताई कि ये वाली बात है कि राजा दशरथ ने ये किया था। बोले वाल्मीकि रामायण में तो मैंने नहीं पढ़ा। मैंने कहा जी मैंने तो पढ़ा है। बोले मुझे बता सकते हो कहाँ लिखा? मैंने वो उसका वो जहाँ वो पेज नंबर है जहाँ वो लिखा हुआ मैंने स्कैन करके उनको भेज दिया, व्हाट्सएप कर दिया। बोले बहुत बहुत शुक्रिया, मैं खुद नहीं पता था। तो मैंने कहा जी मैं ये नहीं को बताना चाहता था कि आपको कम आता था मेरे को ज्यादा आता, लेकिन ये है कि मैंने पढ़ा था तो मुझे याद रह गया। मैंने पॉइंटेड कर दिया कि ये भी एक एंगल था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जय पर वचन न दई। वो वचन जो था अपनी सिर्फ वाइफ के साथ ही नहीं था, अब देखिए वो तीसरी वाइफ थी, सबसे सुंदर थी, सबसे कम उम्र की थी, और उसके ऊपर वो उनका दिल आ गया था, तो वादा उन्होंने वाइफ से पहले उसके फादर के साथ किया था। किसको
जी देखा जाए तो कैकेयी का चरित्र जो वो एकदम बुरा बना के पेश किया गया हर समय समाज में, और
गलती नहीं है
का एंगल इतना बुरा नहीं जितना नहीं। अगर देखा जाए तो फिर दशरथ की गलती
है, ये गलती है, मानता है कि उन्होंने जो वादा किया था उसको निभाया। गलती कुछ नहीं होती मैडम,
ऐसा वादा करना ही नहीं चाहिए।
समय के हिसाब से जो है इंसान जो है जो ठीक लगता है वो डिसीजन लेता है, और होता है ऐसे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जी मैम
चलिए सर,
जी
बहुत आप अब आपको
बहुत बहुत
आसान हो
धन्यवाद।
गई होगी,
थैंक
अब
यू।
अगले एपिसोड का हम इंतजार रहेगा।